वाक्यपदीय ब्रह्म कांड की पढ़ाई जो है आप लोगों की प्रारंभ हो रही है। अच्छी बात है, आपने इसे पहले भी मेरे से पढ़ा है तो मेरी शैली से आप अवगत हैं। ये जो ग्रंथ का नाम है वाक्यपदीय ब्रह्म कांड, इसको थोड़ा समझ लें कि ये ग्रंथ है क्या। इसके नाम में लिखा हुआ है वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम शब्द जो बनता है वो वाक्य और पद इन दोनों को मिलाने से बनता है। इससे लगेगा जैसे कि इस ग्रंथ में वाक्य के बारे में भी बताया गया है और पद के बारे में भी बताया गया है। बिल्कुल ये सही बात भी है। इस ग्रंथ में तीन कांड हैं। एक कांड हो गया वाक्य कांड, एक कांड हो गया पद कांड, और एक कांड जो है उसे कहते हैं ब्रह्म कांड। तो प्रथम ब्रह्म कांड है और वही वाक्यपदी का जो ब्रह्म कांड है उसको हम लोगों को पढ़ना है इस सेमेस्टर में। इसमें लगभग जो है ये 150 के लगभग कारिकाएं हैं इस ग्रंथ में, और आसान भी है। इससे पहले आपने मुझसे भूषण पढ़ा है, परिभाषेंदु पढ़ा है, वो कठिन था, लेकिन ये ग्रंथ आसान है, आसान लगेगा आपको पढ़ने में, और बिल्कुल ही एक नया कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा, एक नई अवधारणा मिलेगी। इस ग्रंथ के कर्ता जो हैं वो भर्तृहरि हैं। आप जानते हैं कि व्याकरण में मुनित्रय बहुत प्रसिद्ध हैं। मुनित्रय में कौन लोग आते हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो इन्हीं तीनों मुनियों की जो उक्ति है उसको प्रमाण माना जाता है व्याकरण शास्त्र में। लेकिन इन तीनों के बाद अगर चौथे कोई हैं जिनको कि प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है तो ये भर्तृहरि हैं, जिन्होंने वाक्यपदीयम नाम के ग्रंथ को लिखा था। इन्होंने महाभाष्य पर भी अपनी एक व्याख्या लिखी हुई है जो बहुत मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनकी व्याख्या है महाभाष्य के ऊपर में भी, और ये बड़े अच्छे व्याकरण रहे हैं। इतिहासकारों में ये थोड़ा विवाद है कि एक राजा भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा कि वही भर्तृहरि ये हैं या ये अलग हैं, लेकिन हमारी परंपरा में ये वाले जो भर्तृहरि हैं वाक्यपदीयम के रचयिता ये अलग हैं, ऐसा ही हमारी परंपरा में बताया गया है और इसी बात को हम आप लोगों को भी बता रहे हैं। तो ये जो भर्तृहरि थे इनके गुरुजी का नाम था वसुरात। कभी कभी परीक्षा में भी ये पूछता है कि भर्तृहरि के गुरु कौन थे, तो बताना है वसुरात। तो वसुरात नाम के गुरुजी के ये शिष्य थे। और वाक्यपदीयम ग्रंथ में तीन कांड हैं, ब्रह्म कांड, वाक्य कांड और पद कांड। इसमें सबसे छोटा कांड जो है ब्रह्म कांड ही है, और वाक्य कांड पद कांड जो है उसमें बहुत सारे श्लोक हैं। श्लोक को व्याकरण में कारिका कहा जाता है, ये आपको मालूम है। तो इसमें 150 कारिकाओं के लगभग जो है हमें पढ़ना है। अब वाक्यपदीय शब्द का मतलब मैं बता दिया, थोड़ा सा इसको व्याकरण के हिसाब से भी देख लेते हैं। इसमें पहले द्वंद्व समास किया जाता है और फिर 6 प्रत्यय करके 6 के प्रत्यय के स्थान में ई आदेश होकर के वाक्यपदीय बनता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, संस्कृत में बोलना होगा या परीक्षा में लिखनी होगी, जिसको हम व्युत्पत्ति भी कहते हैं कि वाक्यपदीयम की व्युत्पत्ति क्या होगी। तो वाक्यम च पदम च इति वाक्य पदे, क्या कहेंगे? वाक्यम च पदम च इति वाक्य पदे, द्वंद्व समास हुआ। और द्वंद्व समास करने के बाद फिर करेंगे विग्रह कि ते अधिकृत्य कृतः ग्रंथः, ते अधिकृत्य कृतः कृतः अति ते अधिकृत्य कृतम पुस्तकम कह दीजिए, क्योंकि हमें नपुंसक बनाना है। तो ते अधिकृत्य कृतम पुस्तकम वाक्यपदीयम, अथवा अगर ग्रंथ कहना हो तो उसमें रत्नम लगा दीजिए अपनी ओर से कि ते अधिकृत्य कृतम ग्रंथ रत्नम वाक्यपदीयम। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, वाक्यम च पदम च इति वाक्य पदे ते अधिकृत्य कृतम ग्रंथ रत्नम अथवा ते अधिकृत्य कृतम पुस्तकम वाक्य पदीयम। ये वाक्य पदीयम शब्द की व्युत्पत्ति हो गई। इसमें जो छ प्रत्यय होता है उसके लिए पाणिनि का सूत्र है, शिशु क्रंद यम सभ द्वंद्वेंद्र जननादिभ्यश्चः। अगर देखना हो तो अष्टाध्यायी में आप इस सूत्र को देख सकते हैं। शिशु शुरू में है, तो शिशु क्रंद यभ सभ द्वंद्वेंद्र जननादिभ्यश्चः। इस सूत्र से छ प्रत्यय होने पर अ छ के स्थान में ई आदेश होने पर वाक्य पदीयम शब्द की निष्पत्ति होती है। इसमें जो प्रथम कांड ब्रह्म कांड है उसके बारे में आप जानिए। वाक्य कांड और पद कांड का तो आप सामान्य जानकारी यही है कि वाक्य कांड में वाक्य के बारे में बताया गया है और पद कांड में पद कांड के बारे में बताया गया है, और इतनी ही जानकारी बहुत है क्योंकि हमारी सिलेबस में ये दोनों कांड तो है नहीं। अपनी सिलेबस में है ब्रह्म कांड, तो ब्रह्म कांड के बारे में डिटेल्स में हमें जानना होगा, वो आज भी जानेंगे और आगे तक जानते ही रहेंगे पूरी पुस्तक पढ़ने तक। ये जो ब्रह्म कांड है, शब्द को सुनने पर लगेगा जैसे कि हम वेदांत में ब्रह्म होता है, उसी तरह से हम ब्रह्म के बारे में इसमें पढ़ेंगे, माया के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है बात, ये अर्ध सत्य है, माने आधा सही भी है और आधा गलत भी है। यहाँ जो ब्रह्म कांड में ब्रह्म शब्द आया है ना, ये वो वेदांत वाले ब्रह्म के लिए डायरेक्ट नहीं आया है। यहाँ जो ब्रह्म है वो इस ब्रह्म से हम शब्द ब्रह्म को पकड़ते हैं, ये ईश्वर ब्रह्म वाला जो ब्रह्म होता है वो यहाँ नहीं लेकर के हमें क्या कौन सा ब्रह्म लेना है, ब्रह्म अर्थात शब्द ब्रह्म। मैंने ये कहा कि डायरेक्ट नहीं, मतलब इनडायरेक्ट तो अंततः तो वही ईश्वर वाला ब्रह्म ही इसके सेंस में है, लेकिन हम उसको जो है ना इनडायरेक्टली ले जाते हैं। सब ब्रह्म से हम शब्द को पकड़ेंगे और शब्द ब्रह्म से जो है ना हम उस ब्रह्म तक का सफर तय करेंगे। ये मैं अभी जनरल बात बता रहा हूँ, अंदर की बात गूढ़ बातों को मैं आगे बताऊंगा। अभी इतना समझना काफी है कि ब्रह्म कांड में क्या है, तो शब्द ब्रह्म के बारे में बताया गया है। 150 के लगभग कारिकाओं के द्वारा शब्द ब्रह्म की चर्चा की गई है कि शब्द ब्रह्म कैसा होता है, उसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनके कितने भेद हैं, और ये हमारा एक चेला है वो सौरभ, वो कुछ पहले कहता था कि मुझे स्फोट के बारे में बड़ी जिज्ञासा है, स्फोट के बारे में गुरुजी मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें कांड में ब्रह्म कांड में ना स्फोट के बारे में बहुत ढेर सारी चर्चाएं हैं, और इन्हीं बातों को जो है ना भूषण में बताया गया है, परम लघु मंजूषा में बताया गया है, लेकिन उसका मूल जो है स्फोट का वो इसी ब्रह्म कांड में है, और इसको पढ़ लेने से वो सारी बातें जो हैं आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी हमने वाक्य पदीयम शब्द कैसे बना वो बताया, वाक्य पदीयम में कितने कांड हैं वो बताया, ब्रह्म कांड में ब्रह्म का मतलब शब्द ब्रह्म है, और इस कांड ब्रह्म कांड में शब्द ब्रह्म के बारे में सारी चर्चाएं की गई हैं। इतनी सारी बातें हो जाने के बाद, अच्छा हाँ, और इसके ग्रंथकार जो हैं वो भर्तृहरि हैं, उनके गुरुजी का नाम वसुरात है, इसको भी स्मरण में रखना है। और एक सूत्र जो पाणिनि का बताया, छ प्रत्यय करने वाला, शिशु क्रंद यब सब वाला, उस सूत्र को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे छ प्रत्यय करते हैं तभी जो है ना, और आयनेयी नियह फड खछघाम प्रत्ययादीनाम, इस सूत्र से छ प्रत्यय के स्थान में ई आदेश हो जाता है, इससे वाक्य पदीयम शब्द की निष्पत्ति होती है। चलिए अच्छी बात है, अब इतनी सब चर्चा कर लेने के बाद मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। मंगलाचरण में है, और आप लोगों को ये याद भी होगी कारिका, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। एक बार फिर से मैं उच्चारण कर देता हूँ, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अब इस मंगलाचरण में ही जो है ना, ऐसा भर्तृहरि ने लिखा है कि इसका संबंध जो है पूरे ग्रंथ में इसका संबंध है इस कारिका का, और इस मंगला इस कारिका के द्वारा मंगलाचरण तो किया ही है इन्होंने, और शब्द ब्रह्म का लक्षण भी इन्होंने बता दिया। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन क्या, तो इस ग्रंथ का ही नहीं व्याकरण अध्ययन का जो प्रयोजन है वही प्रयोजन जो है व्याकरण के हर एक ग्रंथ पर लागू होगा। तो जो व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन है वही प्रयोजन जो है इस भर्तृहरि के ग्रंथ को पढ़ने का भी प्रयोजन है। अब व्याकरण के अध्ययन का क्या प्रयोजन है, तो आप जानते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं ये प्रयोजन माने गए हैं व्याकरण अध्ययन के। और उसमें भी अंतिम प्रयोजन जो है, सबसे मुख्य प्रयोजन जो है वो है मोक्ष नाम का प्रयोजन। तो मोक्ष की प्राप्ति ही जो है इसका अंतिम प्रयोजन है, यही इस का परम पुरुषार्थ है, माने परम प्रयोजन है इस ग्रंथ को पढ़ने का या व्याकरण अध्ययन व्याकरण शास्त्र को पढ़ने का। और इस कारिका के द्वारा भर्तृहरि जी मंगलाचरण भी करते हैं और शब्द ब्रह्म का लक्षण भी बताते हैं। ये कारिका जो है या श्लोक है, कारिका है, तो इसमें हम अन्वय करेंगे, सबसे पहले अन्वय को समझेंगे और फिर जाकर के हम एक एक पद का अर्थ समझेंगे, फिर बाकी के पूरे पूरी कारिका के अर्थ को समझेंगे। तो अन्वय जो है मैं बोलता हूँ और आप चाहें तो इस अन्वय को लिख सकते हैं, बल्कि लिखना चाहिए भी। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि मेरी पढ़ाई के समय में कापी कलम जरूर रखिए और जो नोटेबल बात हो उसको जरूर नोट करता चलिए। तो इसका मैं अन्वय बताता हूँ। यत अनादि निधनम अक्षरम ब्रह्म, इसका अन्वय होगा। सबसे पहले हम यत ले आएंगे, यत के बाद लगाएंगे, यत जो है ना कहाँ पर है इस कारिका में, यदक्षरम, यदक्षरम में यत है ना, यत अक्षरम यदक्षरम, तो यत शब्द वहां से उठाएंगे। सबसे पहले यत को रखेंगे, उसके बाद अनादि निधनम को रखेंगे, तो यत अनादि निधनम। इसके बाद यदक्षरम में जो अक्षरम है उसको ले आएंगे पकड़ करके, तो यत अनादि निधनम अक्षरम, इतना हो गया। अब इसके बाद अक्षरम के बाद ब्रह्म को पकड़ के ले आइए, तो क्या होगा, यत अनादि निधनम अक्षरम ब्रह्म, ठीक है। अब इसके बाद कामा कर दीजिए और फिर यतः को शब्द को पहले ले आइए, यतः को ला करके और फिर उसके आगे लिखिए जगतः प्रक्रिया, यतः जगतः प्रक्रिया, यतः जगतः प्रक्रिया के बाद फिर हम अर्थ भावेन को रखेंगे और उसके बाद विवर्तते को रखेंगे। तो पूरा अभी तक क्या हुआ कि यत अनादि निधनम अक्षरम ब्रह्म, यतः जगतः प्रक्रिया अर्थ भावेन विवर्तते, यहाँ तक हुआ। अब उसके बाद जो है ना तत् शब्द अपनी ओर से लगाएंगे, इस कारिका में तत् शब्द है नहीं, लेकिन एक नियम है कि अगर हम यत शब्द का प्रयोग करते हैं तो तत् शब्द को वहाँ पर जो है का अध्याहार हो जाता है, उसको लाया जाता है। उसके बाद तत् रखिए और तब तत् के बाद शब्द तत्वम को रखना, ठीक है। तो तत् शब्द तत्वम, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ अन्वय, कि यत अनादि निधनम अक्षरम ब्रह्म, यतः जगतः प्रक्रिया अर्थ भावेन विवर्तते तत् शब्द तत्वम, ये इस कारिका का, ये इस मंगलाचरण का जो है अन्वय है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इसी अपने ग्रुप में जो है, जो मैंने अभी अन्वय बताया है ना, इस अन्वय को आप लोग लिख करके जो है ना इस ग्रुप में भेजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग जो है पढ़ते समय में कापी कलम रखते हैं कि नहीं और नोटेबल बात को नोट करते हैं कि नहीं। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, यत अनादि निधनम अक्षरम ब्रह्म, यतः जगतः प्रक्रिया अर्थ भावेन विवर्तते तत् शब्द तत्वम, ठीक है।
इसको लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि जब इस कारिका की व्याख्या पूछी जाएगी तो सबसे पहले आपको अन्वय ही लिखना पड़ता है व्याख्या में, उस समय में आप इसको लिखेंगे। और इसका बहुत ही जो है शॉर्ट में मैं अर्थ कर देता हूँ, जो अन्वय में आपने लिखा है उसका फिर डिटेल्स में जो है अगले दिन के पाठ में बताऊँगा। इसका शॉर्ट में अर्थ होगा कि जो अनादि निधन अक्षर ब्रह्म है, जो अनादि निधन, यत का अर्थ होता है जो, और अनादि निधनम अक्षरम, तो जो अनादि निधन अक्षर ब्रह्म है, यतः जगतः प्रक्रिया, माने यतः माने जिससे, जगतः प्रक्रिया माने जगत की प्रक्रिया, संसार की प्रक्रिया, अर्थ भावे न माने अर्थ रूपे न, अर्थ के रूप से, विवर्तते, विवर्तते माने प्रतिभाषित होता है, प्रतीत होता है, विवर्तते का अर्थ होगा प्रतीत होता है या प्रतिभाषित होता है। तत् शब्द तत्वम, वह जो है वही शब्द तत्व है, वही शब्द तत्व ब्रह्म है। ठीक है, तो क्या क्या कहा गया शब्द तत्व के बारे में, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ब्रह्म क्या है, तो शब्द तत्व ही ब्रह्म है। वह शब्द तत्व कैसा होता है, तो कहा कि यत अनादि निधनम, यह शब्द तत्व जो है वो अनादि निधन होता है, न इसका आदि है न इसका निधन है, ये अक्षर है, ये शब्द तत्व, ये शब्द तत्व जो है ये ब्रह्म है, और इसी शब्द तत्व से जगत की पूरी प्रक्रिया जो है अर्थ के रूप में प्रतीत हुआ करती है। ऐसा जो शब्द तत्व है वही शब्द तत्व ब्रह्म है, और उसी ब्रह्म के बारे में हमें इस पूरे वाक्य पदियम ब्रह्म कांड में जो है हमें पढ़ाई करनी है। तो इतना बता करके अल्पारंभ क्षेम करह, इस नीति के अनुसार आज का पाठ यहीं रखते हैं। आप लोग अन्वय लिख करके जरूर भेजिएगा और उसे जरूर याद करिएगा।